नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और विचार जगाने वाली पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं, परिवर्तन के महान क्षण।
जी,
ये पुस्तक, जैसा कि हमारे श्रोता जानते होंगे, 1988 से 1990 के बीच पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने रची थी। ये उनकी क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला का हिस्सा है।
हाँ, और ये साहित्य उनके लिए बहुत खास था।
बिल्कुल, उन्होंने तो इसे अपना ज्ञान शरीर तक कहा था। वसंत पंचमी 1990 को वंदनिया माताजी से ये आग्रह भी किया था कि इसे, मतलब उनके इस ज्ञान शरीर को, जन जन तक पहुंचाया जाए।
जी हाँ, ये उनका एक तरह से मिशन था।
तो इस पुस्तक में है क्या खास? ये असल में 20वीं सदी के जो आखिरी साल थे, उस समय समाज में एक बड़ा वैचारिक संकट खड़ा हो गया था, उसकी पड़ताल करती है।
सही कहा।
एक तरफ तो देखिए, विज्ञान का, भौतिकवाद का जबरदस्त असर बढ़ रहा था।
हाँ, चीजों को, सुविधाओं को ही सब कुछ माना जाने लगा था।
और दूसरी तरफ इंसानियत, संवेदनाएं, आध्यात्मिकता, ये सब जैसे पीछे छूट रहे थे। तो चलिए आज इसी द्वंद्व को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव ने उस दौर का बड़ा सजीव चित्रण किया है। वो बताते हैं कि कैसे प्रत्यक्षवाद हावी हो गया था।
प्रत्यक्षवाद
मतलब सिर्फ वही सच है जिसे हम देख सकें, छू सकें, अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकें। आत्मा, परमात्मा, नीति, धर्म, ये जो गहरी बातें हैं
जिन्हें महसूस करना पड़ता है।
हाँ बिल्कुल, जिन्हें महसूस करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा अंदर उतरना पड़ता है, उन्हें या तो नज़रअंदाज किया जाने लगा या फिर उनका मजाक उड़ाया गया। वो दौर था जब भावनाओं की, संवेदनाओं की अपनी एक अहमियत कम हो गई थी।
अच्छा,
तो जब सिर्फ बाहरी चीजों पर, भौतिक चीजों पर इतना जोर दिया गया, तो इसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, विज्ञान ने सुविधाएं तो दी, इसमें कोई शक नहीं।
हाँ, सुविधाएं तो बहुत मिली,
पर सवाल ये है कि क्या इंसान सच में ज्यादा सुखी हुआ, ज्यादा संतुष्ट हुआ? यही मूल प्रश्न पूज्य गुरुदेव उठाते हैं। उनका विश्लेषण साफ है कि इस पूरी तरह से भौतिकवादी सोच ने नैतिकता को, मानवीय गरिमा को, आप कह सकते हैं कि हाशिए पर डाल दिया।
हाशिए पर
जी, मनुष्य को क्या समझा जाने लगा? बस एक उन्नत किस्म का जानवर, या शायद एक चलता फिरता पौधा। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि स्वार्थपरता बढ़ी, शोषण बढ़ा। वही सोच कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वो समाज पर हावी हो गई।
तो तरक्की सिर्फ कुछ लोगों की हुई?
हाँ, पूज्य गुरुदेव यही स्पष्ट करते हैं कि जिसे प्रगति कहा गया, उसका फायदा तो कुछ गिने चुने समर्थ लोगों को मिला, जबकि जो बहुसंख्यक थे उनका शोषण होता रहा।
और इसके दूसरे असर?
दूसरे असर भी बहुत गंभीर थे। पर्यावरण की तबाही को देखिए, रिश्तों में जो एक नीरसता, एक खोखलापन आ गया, मानसिक तनाव बढ़ा, और ऐसा लगने लगा मानो समाज धीरे धीरे सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ रहा हो।
बाप रे।
जी, ये सब बिना नैतिकता वाले भौतिकवाद के ही दुष्परिणाम थे। ऊर्जा का अंधाधुंध इस्तेमाल, जहरीले रसायन, शोर, सबने भविष्य के लिए संकट खड़े कर दिए।
ये तो हुआ भौतिकवाद का पहलू जिसने समाज को मुश्किल में डाला। पर आपने शुरू में इशारा किया था कि पूज्य गुरुदेव ने सिक्के का दूसरा पहलू भी देखा, मतलब उस समय का जो अध्यात्म था, क्या वो कोई रास्ता दिखा पा रहा था? ये उसमें भी कुछ समस्याएं थी?
हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस वक्त का जो प्रचलित अध्यात्म था, वो भी ज्यादातर दिखावे में, पाखंड में, कर्म कांडों में उलझ गया था।
अच्छा
जी, लाखों की संख्या में साधु संत थे, भजन मंडलियां थीं, कर्मकांडी पंडित थे, पर समाज में कोई असली सकारात्मक बदलाव नहीं दिख रहा था। हालत ये थी कि जो लोग धर्म का उपदेश दे रहे थे या उसका झंडा लेकर चल रहे थे, वो भी अपनी निजी जिंदगी में काफी स्वार्थी थे। तो वो अध्यात्म असल में परिवर्तन लाने में, कह सकते हैं कि असफल था।
तो स्थिति तो बड़ी विकट थी, एक तरफ बेगाम भौतिकवाद, दूसरी तरफ दिशाहीन अध्यात्म। तो फिर रास्ता क्या था? पूज्य गुरुदेव ने क्या समाधान सुझाया?
समाधान था समन्वय, संतुलन। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमें दोनों चाहिए, लेकिन सही रूप में। हमें ऐसा विज्ञान चाहिए जो नैतिक मूल्यों का, इंसानी संवेदनाओं का आदर करे।
और अध्यात्म?
और ऐसा अध्यात्म चाहिए जो सिर्फ मान्यताओं या कर्मकांड तक ही न सिमटा रहे, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे व्यवहार में एक सकारात्मक बदलाव लाए, जिसे हम देख सकें, परख सकें, मतलब जो प्रत्यक्षवाद की कसौटी पर भी खरा उतरे।
तो विज्ञान और अध्यात्म दुश्मन नहीं?
बिल्कुल नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक, साथी।
और ये सिर्फ विचार थे या उन्होंने इसे जिया भी?
यही तो खास बात है, पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने अपने पूरे जीवन को ही इसकी प्रयोगशाला बना दिया। उन्होंने रास्ता दिखाया आत्मबल जगाने का, अपनी भीतरी शक्ति को, अपनी चेतना को विकसित करने का।
और तरीका क्या बताया?
तरीका था उपासना, साधना और आराधना का त्रिवेणी संगम।
जी।
उपासना यानी ईश्वर से सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि एक गहरा जुड़ाव महसूस करना।
जी।
साधना यानी अपने जीवन में अनुशासन लाना, शालीनता लाना, खुद को रोज बेहतर बनाने की कोशिश करना।
और आराधना?
आराधना यानी निस्वार्थ भाव से, करुणा और उदारता से दूसरों की सेवा करना। उनका साफ मानना था कि अगर व्यक्तित्व ही परिष्कृत नहीं है, सुधरा हुआ नहीं है, तो फिर पूजा पाठ का, कर्मकांड का कोई अर्थ नहीं। असली अध्यात्म तो जीवन जीने की कला है।
अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाना, आत्मबल जगाना, ये सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका प्रभाव कैसा रहा उनके अपने जीवन में? क्या उदाहरण है इसके?
पूज्य गुरुदेव अपने अनुभव से बताते हैं कि ये जो सच्चे अध्यात्म से जागा हुआ आत्मबल है, इसमें एक अद्भुत, आप कह सकती हैं कि लगभग जादुई शक्ति होती है।
जादुई? कैसे?
जरा सोचिए, बिना किसी बड़ी बाहरी फंडिंग के, बिना किसी से कुछ मांगे, उन्होंने हजारों पृष्ठों का विशाल साहित्य रचा।
हाँ, ये तो है।
गायत्री परिवार जैसा लाखों समर्थित साथियों का संगठन खड़ा किया, शांति कुंज जैसी संस्थाएं बनाई, अनगिनत रचनात्मक कार्य शुरू किए। ये सब क्या है? ये उसी आत्मबल का प्रमाण है। ये दिखाता है कि आत्मबल भौतिक साधनों की शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने ये साबित किया कि अगर इंसान अपनी भीतरी शक्ति जगा ले, तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है।
और भविष्य के बारे में पुस्तक के अंत में पूज्य गुरुदेव आने वाले समय को लेकर भी कुछ कहते हैं, शायद कोई आशा।
हाँ बिल्कुल, उनकी एक भविष्यवाणी है, एक बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण है। उनका कहना था कि 21वीं सदी में, यानी हमारे इस समय में, इंसान भौतिकवाद की सीमाओं को समझेगा।
अच्छा।
उसे यह एहसास होगा कि सिर्फ बाहरी तरक्की, सिर्फ चीजें इकट्ठी कर लेना काफी नहीं है, और तब मानवता अनिवार्य रूप से अध्यात्म की ओर लौटेगी।
लेकिन वो पुराने डर्रे वाला अध्यात्म नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दिखावटी अध्यात्म नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने वाला, बेहतर बनाने वाला सच्चा अध्यात्म। विज्ञान खत्म नहीं होगा, पर वो अध्यात्म के दिखाए रास्ते पर चलेगा, नैतिक मूल्यों के साथ चलेगा।
एक नया संतुलन बनेगा।
जी, वो एक नए युग की, एक तरह के नए सतयुग की आहट देखते थे, जहां नारी शक्ति की समाज को दिशा देने में प्रमुख भूमिका होगी, जहां लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और मानवीय चेतना का अभूतपूर्व विकास होगा।
और ये परिवर्तन कैसे आएगा?
उनका मानना था कि ये किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं, बल्कि एक उच्चतर चेतना, एक दैवी चेतना की प्रेरणा से संभव होगा।
तो पूज्य गुरुदेव का ये विश्लेषण, जो उन्होंने दशकों पहले किया था, आज भी हमें कितना कुछ सोचने पर मजबूर करता है ना?
बिल्कुल। हम आज तकनीकी रूप से बहुत आगे हैं, हमारे पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी क्या जीवन में वो असली शांति, वो संतुष्टि, वो सार्थकता है जिसकी हम सबको तलाश रहती है?
ये सवाल आज भी उतना ही मौजूद है। तो क्या हमें आज भी विज्ञान की इस दौड़ के साथ साथ उन गहरी आध्यात्मिक जड़ों को फिर से सींचने की जरूरत है, जिनकी बात पूज्य गुरुदेव कर गए थे? भौतिक उन्नति के साथ साथ चेतना का विकास कितना जरूरी है, इस पर विचार करना तो बनता है।
जी हाँ, जरूर।